हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हमारे पास है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, पुरुषों की सेक्स लाइफ और उनका सेक्स ऑर्गन। दोस्तों, चार में से एक आदमी ऐसा होता है जो सेक्स करने के टाइम लाइट का स्विच ऑफ कर देता है। अभी इसके पीछे कारण क्या है, ये तो वही जाने। दोस्तों, 70% मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के पीरियड के टाइम पे सेक्स रिफ्यूज़ कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लो जॉब लेना भी बंद कर देते हैं। आखिर मर्द तो मर्द होता है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ी सी बात करते हैं मेल के सेक्स ऑर्गन की। दोस्तों, बाय बर्थ मर्द का एक ही लिंग होता है, जिसे हम इंग्लिश में डिक और पेनिस बोलते हैं। लेकिन दुनिया भर में 100 केसेस ऐसे भी दर्ज हो चुके हैं जिनमें मेल के दो सेक्स ऑर्गन हैं। और लास्ट ईयर इंडिया में एक ऐसा लड़का पैदा हुआ जिसके बाय बर्थ 3 सेक्स ऑर्गन थे। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एक चौंकाने वाला तथ्य। क्या आप जानते हैं कि एक जो हेल्थी मैन होता है उसका रात भर में 3 से 5 बार इरेक्ट होता है, और ये इरेक्शन 25 से 30 मिनट तक रहती है। इस तरह से रात के 4 से 5 घंटे इरेक्शन टाइम में ही निकल जाते हैं। दोस्तों, है ना चौंकाने वाला तथ्य। अगर आपको पता हो या ना हो, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। दोस्तों, जब मेल का सेक्स ऑर्गन इरेक्ट होता है तो उसका एक चौथाई हिस्सा बेंट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ मेल के सेक्स ऑर्गन डिक का वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये है न्यूयॉर्क का जना, इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा पेनिस है जिसकी लंबाई 13.5 इंचेस है। चौंक गए ना दोस्तों। तो ये तो थी सबसे बड़े लिंग की बात, अब मैं आपको सबसे छोटा लिंग भी बताता हूँ। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा सेक्स ऑर्गन है 2 इंचेस का। दोस्तों, मेल का सेक्स ऑर्गन बढ़ाने के लिए दुनिया भर में डिफरेंट फंडे यूज करते रहे हैं। इंडिया में भी कुछ साधु ऐसे हैं जो अपने सेक्स ऑर्गन के साथ पत्थर बांधकर घूमते रहते थे ताकि उनका सेक्स ऑर्गन बड़ा हो सके। और ब्राजील में भी कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो अपने पेनिस को सांप से डसवाती थी। उनका ये तथ्य था कि इससे उनका सेक्स ऑर्गन बड़ा हो जाएगा। जो मर्जी कहिए दोस्तों, जो एवरेज लेंथ है पेनिस की वो 5 से 7 इंचेस तक रिकॉर्ड की गई है। फिर भी दुनिया में बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जिनको कि अपने पेनिस की लेंथ की टेंशन बनी रहती है कि उसकी लंबाई कम है। लेकिन दोस्तों, 85% वुमन का मानना यह है कि वो अपने पार्टनर के सेक्स ऑर्गन की लंबाई के साथ सेटिस्फाइड है, क्योंकि जो फीमेल्स की विजाइना होती है उनका सेक्स ऑर्गन होता है वो मेल के सेक्स ऑर्गन के साथ अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेती है उसके साइज और लेंथ के हिसाब से। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेल स्पर्म की, जिसे हम हिंदी में वीर्य कहते हैं, जो सेक्स के दौरान मेल के सेक्स ऑर्गन से निकलता है। दोस्तों, जब पुरुष के लिंग से स्पर्म निकलता है तो उसकी स्पीड 28 माइल पर आवर्स की होती है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो इजेक्युलेशन होता है, जो मेल का स्पर्म निकलता है, इसका कोई भी लिंक उसके दिमाग के साथ नहीं होता। इसका सीधा लिंक उसकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ होता है, जिसे हम हिंदी में सुखना नाड़ी कहते हैं। और दोस्तों, 1 टीस्पून वीर्य में 36 कैलोरीज होती हैं, और इसके साथ साथ सिट्रिक एसिड, अमीनो एसिड, फ्रक्टोज, एंजाइम और पानी होता है। और दोस्तों, अगर हम इस स्पर्म को अपने चेहरे पे लगाएं तो इसका सेम ही इफेक्ट होता है जो जुड़ियां हटाने वाली क्रीम का होता है। दोस्तों, जब पुरुष चलते हैं तो जो उनके टेस्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में उनके अंडे बोलते हैं, वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि वो एक के ऊपर एक आ जाता है, जिससे कि वो टकराए ना। दोस्तों, एक हेल्थी मैन को एक दिन में 11 बार इरेक्शन आती है। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते मैं आपको पुरुषों के दिमाग की बात बताता हूँ कि जो मेंस होते हैं वो हर 7 सेकंड में एक बार सेक्स के बारे में सोचते हैं। अब दोस्तों, इतने फैक्ट्स तो आपने जान ही लिए, तो अब मैं आपको एक फ़ायदा बताता हूँ। अगर आप भी अपनी कैलोरीज बर्न करना चाहते हैं तो 30 मिनट के सेक्स के दौरान हमारी 200 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। ये तो थी मज़ेदार बात, लेकिन मैं आपको एक और चौंकाने वाला तथ्य बताता हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे केसेस रजिस्टर हुए हैं जिनमें कि सेक्स करते दौरान मेल के सेक्स ऑर्गन की नाड़ियां फट गई, और डॉक्टर्स का मानना यह है कि ये उनके सेक्स करने की गलत पोस्चर की वजह से हुआ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले आपको पता चल जाए, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें।
आज मैं आपको सेक्स से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो आमतौर पे आप लोगों को किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, और पेरेंट्स भी बताने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। लेकिन सेक्स एजुकेशन तो हमेशा हर किसी को होनी ही चाहिए। एक एज के बाद आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर सेक्स क्या है और क्या सही गाइडेंस होनी चाहिए। सेक्स से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं पता, और वो गलती अगर आप कर लेते हो तो कम उम्र में ही माँ बन जाते हो। तो ये वाली वीडियो लड़के लड़की दोनों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो मेक श्योर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर लड़का हर लड़की सेक्स से जुड़ी इन सारी बातों को जान पाए। मैं हूँ रेखा, आप देख रहे हो बी नेचुरल, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप एडल्ट हैं तो आपने कॉन्डम के बारे में तो सुना ही होगा, उसको यूज करने का तरीका भी आपको पता होगा। कई लड़कियां और लड़के कॉन्डम ये सोचकर यूज करते हैं कि 100% आपको प्रोटेक्शन दे देता है। अगर मैं आपसे साइंटिफिक टर्म में बात करूं तो ये 100% सेफ नहीं होता है। मेनली दो तरीकों की वजह से कॉन्डम फेल हो जाता है आपको 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में। पहला, जब भी आप कॉन्डम खोलते हो, अगर आप जल्दबाजी में खोल दे उसको, नाखून लग जाए आपका उसमें, या दांत से आप फाड़ रहे हो आपके नुकीले दांत लग जाए उसके ऊपर, जरा सा भी कट आ जाए जो आपको नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आएगा लेकिन कट तो लग चुका है और जल्दबाजी में आपने वो यूज कर लिया और आपके पता चले बिना, सब कुछ ट्रांसफर हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आप ध्यान से उसको खोला कीजिए। और दूसरी सिचुएशन तब आती है जब इंटरकोर्स करते करते आपको पता भी नहीं चलता है और वो कभी कभी फट जाता है। जरूरी नहीं है कि अगर आप 2, 3, 4 एक साथ भी यूज करोगे तो वो फटेगा नहीं, फटने के चांसेस तो उसके हो ही जाते हैं, वो कभी भी फट सकता है। तो अगर वो फट जाए तो भी आप 100% सेफ नहीं होते हो। इसीलिए ऑल ओवर अगर बात की जाए तो कम से कम 14% माना जाता है कि कॉन्डम सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि बिना कॉन्डम के कभी भी आप इंटरकोर्स ना करें जब तक आप कंसीव नहीं करना चाहती हैं। तो अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो बेशक इसको यूज ना करें। तो भी सेक्स करने के लिए हमेशा कॉन्डम यूज करें। आप सेक्स तो कर लेते हो लेकिन आपने कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है किसी भी रीजन की वजह से और आप कंसीव नहीं करना चाहते हो, तो ऐसे में बहुत सारी लड़कियां कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना स्टार्ट कर देती है। मार्केट में बहुत सी आती है जैसे कि मालाडी होगी, लेकिन ये लेने से पहले आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, आपको नहीं पता आपकी बॉडी को क्या सूट करेगा। तो प्लीज गायनी को विजिट करें और वो जो आपको रेकमेंड करे वही आप लें। साथ ही साथ कुछ अनमैरिड लड़कियां होती है जो शादी के पहले ही सेक्स कर लेती हैं और अब वो कंसीव करने का उनको डर होता है कहीं वो कंसीव ना कर ले, तो वो आईपीएल जैसी दवाइयां लेना स्टार्ट कर देती हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। आप साल में एक बार लो, दो बार लो, इट्स ओके, बट उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो जो डॉक्टर आपको दवाइयां देती है उसकी जगह। और अगर आपने इसको आईपीएल को रेगुलरली लेना स्टार्ट कर दिया तो आपके पीरियड्स इररेगुलर हो जाते हैं, आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है और आगे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करती है अगर आप आईपीएल डेली डोज में लेना स्टार्ट कर देते हो आफ्टर सेक्स। सो उसको बिग नो, वो आपको नहीं लेना है, आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेना है वो भी डॉक्टर की गाइडेंस पे। लिटरली मुझे ऐसे मेल्स आते हैं जहाँ पे लड़कियों के मन में सेक्स से रिलेटेड इतने सारे क्वेरीज होते हैं क्योंकि बेसिक सी चीज है लेकिन कोई बताने वाला है नहीं, गाइड करने वाला है, बिना गाइडेंस के आपको समझ में नहीं आएगा। कई लड़कियों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि अगर आप ओरल सेक्स करते हो तो क्या सीमन का माउथ के थ्रू आपके बॉडी में जाने की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, कंसीव कर लोगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, जब तक सीमन वजाइना के अंदर आपके एग से जा करके नहीं मिलता है आप कंसीव नहीं करते हो। अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाली हूँ। कई लोग सेक्स के दौरान कॉन्डम यूज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाते हैं तो वो कॉन्डम यूज ना करना ही प्रेफर करते हैं, बट ऐसे में वो कंसीव भी नहीं करना चाहते हैं तो वो थोड़ी स्मार्टनेस दिखाते हैं, सीमन को वो बॉडी के अंदर छोड़ने की बजाय वो बाहर निकाल देते हैं और उनको लगता है कि ऐसा करने से प्रेग्नेंट नहीं होंगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है ऐसा करने से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है? इसके बारे में और गहराई में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड एक और वीडियो बनाई थी, यहाँ क्लिक करके आप चेक कर रहे हैं ना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वी नेचुरल को फटाफट से देख लो, आपने वो रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। और मैं अपनी हर वीडियो में एक टॉपिक लेके आती हूँ और एक ऑफर डिस्काउंट के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैं आपको बता दूं कि अप टू 35% ऑफ चल रहा है गुड वाइब्स के बॉडी लोशंस में। बॉडी लोशंस में बहुत सारी वैरायटीज आपको मिल जाती है, मैं यहाँ पे आपको 5 बॉडी लोशंस की वैरायटीज दिखा रही हूँ, जैसे कि वनीला, लेवेंडर, एलोवेरा, एलोवेरा विद सनस्क्रीन एंड शिया बटर। ये सारे बॉडी लोशंस आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज में गुड वाइब्स में मिल जाते हैं। और जो मैं यहाँ पे एलोवेरा वाला दिखा रही हूँ इसके अंदर SPF 50 भी है, PA++, UVA है और इन सभी के अंदर कोई पैराबेन नहीं है, क्रुएल्टी फ्री है। विंटर्स में आपकी बॉडी बहुत ज्यादा ड्राई, जल डैमेज हो जाती है तो ऐसे टाइम पे आप इस तरीके का बॉडी लोशन लगा करके आप अपनी बॉडी को रिपेयर करते हो, डैमेज को हटाते हो, स्किन को एकदम सॉफ्ट, सपल, स्मूथ बनाते हो। साथ ही साथ जो मैं आपको एलोवेरा वाला दिखा रही हूँ उसके अंदर तो SPF भी है तो आपको सूरज की हार्मफुल रेज से भी प्रोटेक्शन मिल जाता है, प्लस केमिकल रहित है और 35% डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है इन सारे बॉडी लोशंस का, आप क्लिक करके अपने लिए इस विंटर्स अच्छा बॉडी लोशन ढूंढ रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात है कि पंप पैकेजिंग में आता है, सिर्फ एक पंप करना है, बॉडी पे लगाना है और चुटकियों में आपकी बॉडी सॉफ्ट हो जाती है, खुशबू भी बहुत अच्छी आपको आएगी और ये पूरा दिन आपकी बॉडी को सॉफ्ट बनाए रखेगा। सेक्स के बाद प्रेग्नेंट तभी होती है जब उसका ओवुलेशन स्टार्ट हो चुका होता है और जब सीमन वजाइना के अंदर जाके एग्जिट मिल जाता है। इंटरकोर्स के दौरान अगर आपके पार्टनर ने कॉन्डोम नहीं ले रखा होता है और आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी नहीं ले रही होती हैं और आपके पार्टनर ने स्पर्म आपके वजाइना के अंदर डालने की बजाय बाहर उसको निकाल दिया है और आपको लगता है स्पर्म तो अंदर गया नहीं है तो आप तो प्रेग्नेंट होंगे नहीं, ये 100% ट्रू नहीं है। इस मेथड से भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो अगर आपका ओवुलेशन हो चुका होगा और इंटरकोर्स के दौरान अगर तरल पदार्थ भी रिलीज होता है और उसके अंदर भी स्पर्म के शुक्राणु होते हैं और वो एक बार आपके अंदर वजाइना में चले जाते हैं तो आप किसी भी वक्त कंसीव कर सकते हो। तो सिर्फ बाहर पूरा का पूरा स्पर्म निकाल देना आपको 100% गारंटी नहीं दे देता है। 90% केसेस में ऐसा होता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो, लेकिन यहाँ पर भी कुछ परसेंट चांसेस होते हैं कि अगर उन तरल पदार्थ के अंदर से शुक्राणु आपके वजाइना के अंदर चला गया, ओवुलेशन हो गया, तो आप कंसीव कर लोगे। तो ये 100% प्रेगनेंसी प्रूफ तरीका नहीं है। अब बात आती है कि कॉन्डम के बिना या कॉन्डम के साथ 100% श्योरिटी तो कहीं आपको नहीं मिल रही है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आप दो और तरीके हैं जो ट्राई कर सकते हैं। एक होता है इंजेक्शंस जो हर 3 महीने बाद आपको लगवाने पड़ते हैं और 3 महीने के लिए आप टेंशन फ्री हो जाती हैं कि आपको मतलब कंसीव नहीं करते हो आप सेक्स के बाद, चाहे स्पर्म अंदर जाए या ना जाए, आप ऑफकोर्स अंदर जाए तो भी आप कंसीव नहीं करते हो। तो इंजेक्शन के लिए अगेन आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, वो आपको रिकमेंड करेंगे, वो इसके बारे में बताएंगे। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, किसी की बॉडी को सूट करता है और किसी की बॉडी को सूट नहीं भी करता है, तो वो टोटली आपकी बॉडी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। दूसरा तरीका होता है कॉपर टी का। बहुत सारी मैरिड वुमेन कॉपर टी लगाती हैं और एक बार कॉपर टी आपके अंदर लगा दिया जाता है तब आप मां नहीं बन पाते हो कुछ टाइम के लिए, जब तक वो कॉपर टी आपकी बॉडी में रहेगा। अब जब मां बनना चाहते हो तो आप उस कॉपर टी को बाहर भी निकलवा सकते हैं, लेकिन कॉपर टी के भी बेनिफिट्स होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं और वो भी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। आपकी बॉडी कॉपर टी को एडजस्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगा सकती है, मतलब 1-2 महीना लग सकता है और उस 1-2 महीने के दौरान आपको इररेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, आपको पेट में दर्द हो सकता है या आपको दर्द नहीं भी हो सकता है, अगेन आपकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है ये। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कपल्स की जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं, वो और बच्चा नहीं चाहते हैं, अपनी सेक्स लाइफ को भी एंजॉय करना चाहते हैं, कॉन्डोम भी यूज नहीं करना चाहते हैं, इंजेक्शन नहीं लेना है, कॉपर टी नहीं लेना है और प्रेगनेंसी तो उनको अब चाहिए ही नहीं, अब वो मां नहीं बनना चाहते या पिता नहीं बनना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको एक लास्ट ऑप्शन में देती हूँ कि आप चाहो तो नसबंदी करा सकते हो। नसबंदी लड़कों का भी होता है, नसबंदी लड़कियों का भी होता है। इस प्रोसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आराम से हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता है, लोग कहते हैं नपुंसक हो जाते हैं नसबंदी कराने के बाद, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपका मिथ है। लेकिन हाँ, नसबंदी कराने के बाद आप मां नहीं बन पाएंगे या पिता नहीं बन पाएंगे, गर्ल बॉय दोनों करा सकते हैं। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं अगर आप बच्चा नहीं चाहते हो और अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, कॉन्डम वगैरह यूज नहीं करना चाहते हो तो। लेकिन मैं तो हाईली रेकमेंड करती हूँ कॉन्डम हर किसी को यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे काफी ज्यादा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस ना हो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, आप दोनों की हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहता है। एक आखिरी एडवाइस आप लोगों को देना चाहूंगी, जब भी आप फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स कर रहे होते हो, लव मेकिंग कर रहे होते हो, उसको लव मेकिंग क्यों बोलते हैं, प्यार की शुरुआत हो रही होती है, तो ज्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं, टेक योर ओन टाइम, एक दूसरे को जाने पहचाने, बातें करें, अच्छे दोस्त बने। और जैसे भी बिंदास की वीडियो में आपको बताया फ्रेंड्स ने कि पहले एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने, प्यार तो आप जिंदगी भर एक दूसरे के साथ करते रहोगे, तो पहले दोस्त फिर प्यार और उसके बाद आप अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय करोगे। गर्ल को भी अच्छा लगेगा, बॉय को भी अच्छा लगेगा, जल्दबाजी किसी चीज के लिए भी ना करें और कभी भी हमेशा एक ही पॉइंट पे जंप ना करें कि यू हैव टू मेक इट, यू हैव टू मेक इट, नो, यू हैव टू डू लव मेकिंग। तो स्टार्ट विद द लव मेकिंग एंड गिव हर प्लेजर, गिव हिम प्लेजर, एंजॉय योर ईच मोमेंट टुगेदर एंड देन गो विद द सेक्स पार्ट। Sex is just not all about intercourse where penis, vagina have fun together. No, it's not like that. It is a process where two souls enjoy together. I think sex के बारे में मैंने आपको enough knowledge दे दी है। Girl हो, boy हो, हर किसी के काम आने वाली video है। Sex को एक taboo नहीं बनाते हैं, इसके बारे में खुल के बात करते हैं, क्योंकि इसी की awareness और education की कमी की वजह से हादसे हो रहे हैं। So be proud to be a girl or a boy and enjoy your sex life. मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे ब्लॉग चैनल को आप देख सकते हैं जहाँ मैं और मेरे हस्बैंड प्रिंस हम दोनों अपनी हेल्दी मैरिज लाइफ को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, ताकि हमसे शायद आप एंटरटेन होके जाओ या खुद सीख के जाओ। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द पिन कमेंट। बाय।
हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका जीना और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सेक्स एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेक्स एजुकेशन फॉर गर्ल्स। फ्रेंड्स, ये तो हमको पता ही है कि गर्ल्स को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, बट हम क्या करते हैं, हम अक्सर एक टीन एज की लड़की को ज्यादा ही एजुकेशन देते हैं, जो 17 साल की या 18 साल से ऊपर की लड़कियों को। हम सोचते हैं कि एक 12 साल की लड़की या 14 साल की लड़की को अगर हम ये सब चीजों के बारे में बताएंगे तो कहीं वो किसी गलत ट्रैक पे ना पहुंच जाए। हालांकि कई लोगों का ये मानना सही भी है, बट आज की डेट में ये सही नहीं है, क्योंकि एक 17 साल की लड़की को तो एजुकेशन मिल जाती है इन सब चीजों की, क्योंकि उनका फ्रेंड सर्कल, उनका बुक्स एंड उनको इतनी सारी चीजों की आजकल नॉलेज हो गई, क्योंकि हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा एडवांस हो गई इन सब चीजों को लेकर, तो उनको ये सब चीजों की नॉलेज होती है। बट हमारा जो आज का मेन मोटिव है बताने का कि अगर लड़कियों को एजुकेशन दो, सेक्स एजुकेशन, तो वो कम से कम 12 साल के बच्चों को देना शुरू कर दो लड़कियों को, क्योंकि क्या होता है कि जब हम 12 साल से हमारे गर्ल्स के हार्मोन्स चेंज होने शुरू होते हैं, उनकी बॉडी ग्रोथ करनी शुरू करती है, तो उस समय अगर हम इनको इन सब चीजों की नॉलेज देंगे तो वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लड़कियां 12-13 साल की लड़कियां स्कूल जाती हैं, स्कूल जाती हैं या ट्यूशंस जाती हैं, तो वहां पर उनके बॉयज फ्रेंड्स बनते हैं, तो हमेशा से ये देखा गया है कि अपोजिट अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है इंसान को। तो बच्चियां क्या होती हैं कि उस समय अपने क्लासमेट्स के संग ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, तो उनको सही या गलत में फर्क नहीं पता होता। लेकिन अगर ये सब चीजें हमारी एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबकी, खासतौर पर मदर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी इस छोटी बच्ची को वो सब चीजें बताएं, अपने तरीके से समझाएं, कि जिससे वो लाइफ में कुछ भी गलत करने से पहले सोचे। क्योंकि हमारे सबसे बड़ी बात है कि जो लाइफ में गलत करने की एज भी होती है तो वो 13 साल से ही शुरू होती है, 13 साल से लेके वो एज 16 साल तक की होती है। उस बीच ही बच्चा सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि 17 साल के बाद तो हर कोई फर्क कर लेता है, और वैसे भी कहा गया है कि गर्ल्स बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती है लाइफ में, तो इसके लिए हमें अपने लड़कियों को थोड़ी सी और नॉलेज देने की जरूरत है, जिससे कि वो सेक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके डीपली मत समझाइए, लेकिन उनको कुछ इस हद तक समझाइए कि उनको सही और गलत में फर्क समझ में आना शुरू हो जाए। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप प्लीज अपने बच्चियों को सेक्स एजुकेशन दें, उससे वो बिगड़ेंगी नहीं बल्कि उनका आने वाला फ्यूचर और अच्छे तरीके से बनेगा। तो प्लीज आप सब उनको नॉलेज दीजिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि अगर खासतौर पे मॉम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मॉम अपनी बच्ची को एक एज अ फ्रेंड सबसे समझाएंगी तो शायद वो सही और गलत में बहुत अच्छे तरीके से फर्क कर सकती है। तो प्लीज, और अगर आपको हमारा ये चैनल उससे पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस अधिक हमारी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सेक्स एजुकेशन के लिए।
लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत में सेक्स ऐसा मामला है जिसमें दिलचस्पी तो सबकी है, लेकिन बात करने से लोग हिचकते हैं। पुरुष तो फिर भी सेक्स के बारे में अपना नजरिया बयां कर देते हैं, लेकिन महिलाएं अगर खुलकर इस बारे में बात करना भी चाहें तो उन्हें गलत नजरों से देखा जाता है। सेक्स के मामले में महिलाएं शर्म और सामाजिक बंदिशों के चलते अक्सर मौन रहती हैं। यूं तो प्राचीन भारतीय समाज शारीरिक संबंधों को लेकर काफी खुले जहन का रहा था, जिसकी मिसाल हमें खुजराहो के मंदिरों से लेकर वत्स्यायन के विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र तक देखने को मिलती है। समाज आगे बढ़ा, हमारा देश जिस्मानी रिश्तों के प्रति संकुचित होता चला गया। मर्द औरत के यौन संबंधों से जुड़ी बातों में पर्देदारी और पहरेदारी हो गई। हालांकि अब यौन संबंधों को लेकर फिर से एक बड़ा बदलाव आ रहा है, ऐसा बदलाव जो क्रांतिकारी है। कुदरती तौर पर सेक्स का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करने और परिवार बढ़ाने तक ही सीमित था, लेकिन साइंस की बदौलत अब सेक्स के बिना भी बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। IVF और टेस्ट ट्यूब के जरिए ये पूरी तरह संभव है। दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी 1978 में पैदा हुआ था। उसके बाद से अब तक करीब 80 लाख बच्चे इस तकनीक के जरिए दुनिया में आ चुके हैं। रिसर्चरों का मानना है कि भविष्य में इस तरीके से पैदा हुए बच्चों की तादाद में भारी इजाफा देखने को मिलेगा। लेखक हेनरी टी ग्रीली का कहना है कि आने वाले समय में 20 से 40 साल की उम्र वाले सेहतमंद जोड़े लैब में गर्भधारण कराना पसंद करेंगे। वो सेक्स बच्चा पैदा करने के लिए नहीं बल्कि जिस्मानी जरूरत और खुशी के लिए करेंगे। अगर बच्चे बिना सेक्स के पैदा हो सकते हैं तो फिर सेक्स की क्या जरूरत है। सेक्स का काम मर्द और औरत की जिस्मानी जरूरत को पूरा करना और उन दोनों का रिश्ता मजबूत करना है, लेकिन यहाँ भी धर्म बहुत बड़ा रोड़ा है। हर धर्म यौन संबंध को लेकर कई तरह की पाबंदियाँ और नियम कायदे बताता है। ईसाई धर्म में कहा गया है कि मर्द औरत को सेक्स सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए करना चाहिए। अगर शारीरिक सुख और सुखी के लिए सेक्स किया जाए तो वो अनैतिक है। हालांकि ईसाई धर्म की भी पुरानी किताब के सोलोमन सॉन्ग के जोश में आने के साथ सेक्स को बेहतरीन बताया गया है। साथ ही यौन संबंध को पति पत्नी के बीच ही नहीं बल्कि दो प्यार करने वालों के बीच का निजी चीज बताया गया है। ग्रीस के बड़े दार्शनिक अरस्तु इस विषय पर रोशनी डालते हुए कहते हैं कि प्यार कामुक इच्छाओं का अंत है, यानी अगर दो लोगों के बीच मोहब्बत है तो उनका मुकाम शारीरिक संबंध बनाने तक पूरा होता है। इनके मुताबिक सेक्स कोई मामूली काम नहीं है बल्कि ये किसी को प्यार करने और किसी का प्यार पाने के लिए एक जरूरी और सम्मानजनक काम है। जबकि अमेरिकी समाजशास्त्री डेविड हैलपेरिन का कहना है कि सेक्स सिर्फ सेक्स के लिए होता है, उसमें जरूरत पूरी करने या कोई रिश्ता मजबूत करने जैसी कोई चीज शामिल नहीं होती। हो सकता है कि जब इंसान ने सेक्स शुरू किया हो तब वो सिर्फ शारीरिक जरूरत पूरी करने का माध्यम रहा हो, लेकिन जब परिवार बनने लगे तो हो सकता है कि इसे रिश्ता मजबूत करने का भी माध्यम समझा जाने लगे। लेकिन आज समाज पूरी तरह बदल गया है। आज तो सेक्स पैसे देकर भी किया जा रहा है। बहुत से लोग पेशेवर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सेक्स को हथियार बनाते हैं। ऐसे में हालात में यकीनन किसी का भी शारीरिक जरूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन रिश्ता मजबूत होने या जज्बाती तौर पर एक दूसरे से जुड़ने जैसी कोई चीज नहीं होती। ऐसे में फिर सेक्स का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि सेक्स सिर्फ सेक्स के लिए किया जाए, इसमें बारीकियां न तलाशी जाए। बदलते समय के साथ आज न जाने इंसानी रिश्ते बदल रहे हैं बल्कि यौन संबंध को लेकर लोगों का बर्ताव और रिश्तों के प्रति सोच भी बदल रही है। 2015 में अमेरिका की सैन डियागो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जीन एम्पटिंग ने एक रिसर्च पेपर में कहा था कि 1970 से 2010 तक अमेरिका में बहुत हद तक लोगों ने बिना शादी के सेक्सुअल रिलेशनशिप को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। नई पीढ़ी का मानना है कि सेक्सुअलिटी समाज की बंदिशों में नहीं बंधी होनी चाहिए। रिसर्चर टिंग के मुताबिक सेक्सुअल नैतिकता समय की पाबंदी नहीं है, उनमें बदलाव होते रहे हैं, हो रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे। अब तो ये बदलाव इतनी तेजी से हो रहे हैं कि शायद हम ये बदलाव स्वीकार करने के लिए तैयार भी नहीं हैं। जिस्मानी रिश्ते केवल मर्द और औरत के बीच नहीं बनते बल्कि लेस्बियन और गे रिलेशनशिप की भी कई देशों में मान्यता देना शुरू कर दी है। ये कोई मानसिक या शारीरिक विकृति नहीं है, हालांकि धार्मिक और सामाजिक दोनों ही रूप से इसे अनैतिक व्यवहार माना जा रहा है। धर्म तो कहता है कि समान लिंग वाले जानवर तक आपस में संबंध नहीं बनाते क्योंकि वो जानते हैं कि ये अनैतिक है, जबकि साइंस कहती है कि जापानी मकाक, फंग मक्खियां, फ्लोर फ्राइज, अल्बाट्रॉस पक्षी और बोजन नॉट डॉल्फिन समेत ऐसी करीब 500 प्रजातियां हैं जिनके बीच होमोसेक्सुअलिटी होती है, लेकिन हम इन्हें लेस्बियन या गे होमोसेक्सुअल जैसे नाम नहीं देते हैं। आखिर इन सब के बीच लाइन खींची किसने? शायद उन लोगों ने जिन्होंने सेक्स को सिर्फ बच्चे पैदा करने की जरूरत समझा। अगर सेक्स क्यों के जुमले को सावलिया निशान हटा लिया जाए तो शायद लोग इसका बेहतर मतलब समझ पाएंगे। सेक्स की ख्वाहिश कुदरती प्रक्रिया है। जैसे जैसे यौन संबंध के प्रति लोगों की सोच बदल रही है, वैसे वैसे लोगों ने गे और लेस्बियन रिश्तों को भी स्वीकार करना शुरू कर दिया है। हाल ही में 1941 देशों की गई रिसर्च ये बताती है कि 1981 से 2014 तक LGBT समुदाय को स्वीकार करने की दर में करीब 57% इजाफा हुआ है। इसमें मीडिया, मेडिकल सपोर्ट और मनोवैज्ञानिक संस्थाओं के सकारात्मक के साथ बहुत अहम रोल निभाया है। इसके अलावा आज पोर्न देखने का चलन जितना बढ़ चुका है उससे साफ जाहिर है कि लोगों में सेक्स की भूख कितनी ज्यादा है। पोर्न देखने से कुछ मिले ना मिले लेकिन सेक्स की ख्वाहिश बहुत हद तक शांत हो जाती है। जानकारों का यहाँ तक भी कहना है कि भविष्य में सेक्स और भी ज्यादा डिजिटल और सिंथेटिक हो जाएगा। यही नहीं, भविष्य में सेक्स के और भी नए नए तरीके सामने आ सकते हैं। अभी तक टेस्ट ट्यूब और IVF को वही लोग अपना रहे हैं जो प्राकृतिक तरीके से बच्चा पैदा करने में असफल हैं। हो सकता है आने वाले समय में सभी लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बच्चा पैदा करने के लिए नर और मादा के अंडों का मिलना जरूरी है लेकिन गे और लेस्बियन के संदर्भ में ये संभव नहीं है। लिहाजा ऐसे लोग बच्चे की चाहत पूरी करने के लिए इस तकनीक का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉलीवुड में इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। आपकी सेक्स के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कृपया इस वीडियो को सभी देखें परंतु फैमिली के साथ बैठकर ना देखें। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, TS मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफर। आज एक ऐसा टॉपिक पकड़ा है जिसे बोलना और सुनना दोनों ऑकवर्ड फीलिंग देता है, खासकर उस समय जब आप में और मेरे में एज का गैप बहुत ज्यादा है। मैंने अपने व्यूअर्स को हमेशा अपने सन्स एंड डॉटर्स माना है लेकिन आप मेरे दोस्त भी तो हो। इस वीडियो को सेक्स एजुकेशन ही समझना, खुद ब खुद इसके अलग मीनिंग ना निकालना। आपने टॉपिक देखा कि सेक्स बॉम्ब, आपको क्यूरियोसिटी हुई होगी ना कि ये कौन सा बॉम्ब है, क्योंकि आप यंग हो इसलिए सेक्स का नाम पढ़ते ही क्लिक कर दिया। सेक्सुअल अर्ज को सेटिस्फाई करना इज लाइक एक बॉम्ब को डिफ्यूज करना, इसीलिए इस अर्ज को सेक्स बॉम्ब कहा गया है। आज के सिनेरियो में सबसे बड़ी सामाजिक बुराई है बलात्कार, रेप। इसको समाज का कोई भी पार्ट 0.01% भी अप्रूव नहीं करता और कानून भी इस गलती को सबसे बड़ी गलती मानता है और सबसे बड़ी सजा देता है। मैंने इस पर कुछ रिसर्च और स्टडी की है। मैं दो जेलों के, बठिंडा और अमृतसर के, उन कैदियों को मिला हूं जो रेप केस में सजा काट रहे हैं। उनमें से सभी ने, आई मीन 100% ऑफ देम ने रो रो कर अपनी बात सुनाई है कि सिर्फ 10 सेकंड्स की वो गलती आज उनकी लाइफ को बर्बाद कर चुकी है और साथ में उनके परिवार की लाइफ को भी बर्बाद कर चुकी है। वो 10 सेकंड का मजा उनके लिए पूरी लाइफ का पछतावा बन गया है। अमृतसर की जेल में तो एक लड़का इतना रो रहा था कि वो 3 साल से जेल में है और उसके पेरेंट्स एक बार भी ना मिलने आए, ना ही कोई खबर ली। मैं उसकी रिक्वेस्ट पे उसके घर गया। उसका घर एक गांव में था, पेरेंट्स अमीर थे, जिम्मेदार थे। मैंने उनसे कहा कि आप अपने बेटे को क्यों मिलने नहीं गए, वो जेल में 3 साल से बंद है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए वो उस दिन मर गया था जब उसने रेप किया था। अगर वो कत्ल करके भी गया होता ना तब भी शायद हम उसका साथ देते, लेकिन एक रेपिस्ट एक बलात्कारी के मां बाप नहीं कहलाना चाहते। इवन जेलों में भी दूसरे कैदी बलात्कारी को कैदी नहीं पापी मानते हैं और उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखते। कितने ही बड़े बड़े लोग नामी गरामी सक्सेस की हाइट पर पहुंच के सिर्फ इस पाप के कारण जमीन पर गिर जाते हैं और दोबारा उठ नहीं पाते। मैंने इसीलिए इस टॉपिक को अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने का फैसला लिया है ताकि आपकी लाइफ में कभी भी ऐसा मौका ना आए कि आप पछतावे के अलावा कुछ ना कर सको। पहले तो मैं इस गलती के, जिसको गलती ना कह के पाप कहूंगा, इस पाप का कारण क्या बनता है वो बताऊंगा और उस कारण से कैसे बचा जा सकता है वो एडवाइस दूंगा। सेक्स करने की अर्ज क्यों होती है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है और गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में ही हो सकता है। बॉयज में ज्यादा और गर्ल्स में बहुत कम, क्योंकि ये लड़कों में ज्यादा होती है, इसलिए मैं लड़कों को ही एड्रेस कर रहा हूं, उन्हीं को एडवाइस दूंगा। गर्ल्स इसको अपने मुताबिक समझ सकती हैं। तो लड़कों, इंसान हो या जानवर या कोई पक्षी या पानी का जीव, नेचर ने उनकी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए इंटरकोर्स का एक प्रोसेस बनाया है। एक मेल जब फीमेल के साथ इंटरकोर्स करता है तो उसका सेमेन फीमेल के अंदर जाके एक नई बॉडी को जन्म देता है। मेल और फीमेल इंटरकोर्स कर पाए इसके लिए नेचर ने हमारे दिमाग को इस तरह बनाया है कि हम जैसे ही इंटरकोर्स सोचते हैं हमें वो नजर आना शुरू हो जाता है और हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स में एक सनसनी होती है, एक उत्तेजना होती है, एक सेक्स करने की इच्छा होती है। ये सेक्स करने की इच्छा को ही मैंने सेक्स बॉम्ब कहा है, क्योंकि उस समय इतनी ज्यादा आग लगती है कि आग को बुझाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। यानी इस बॉम्ब का फटना जरूरी होता है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। इस अर्ज को सेटिस्फाई करना एकदम से कंपल्शन बन जाता है। ये बॉम्ब फैंटेसाइज करके भी बन जाता है, किसी और लड़की के बारे में सोचकर, फिल्मों में उत्तेजित करने वाले सीन्स को देखकर, मैगजीन्स में उत्तेजित करने वाली पिक्चर्स को देखकर या फिर पॉर्न वीडियोस को देखकर। हम पारिवारिक प्राणी हैं और परिवार की गरिमा को समझते हैं। हम जानते हैं कि परिवार में ऑपोजिट जेंडर के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना है। फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, सन, डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इन सब के बारे में इज्जत करनी है और इनके बारे में कोई भी गलत ख्याल हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में फीड होता है। हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग ही ऐसी होती है कि ना ये गलत नजर से देखता है और ना ही कुछ गलत सोचता है और ना ही इसके अंदर कोई ऐसी अर्ज होती है। इसीलिए मैरिज का सिस्टम बनाया गया था कि दो ऑपोजिट जेंडर्स इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर पाए, इस आग को आपस में ही बुझा पाए। मैरिड लोगों में भी जरूरी नहीं कि दोनों पार्टनर्स में सेम टाइम में अर्ज हो। जबरदस्ती वाइफ के साथ किया हुआ सेक्स भी रेप ही कहलाता है। अब रेप क्यों होता है? मैंने जेल में कैदियों से डिस्कस किया तो पता लगा कि जब वो आग लगी तब वो अर्ज हुई तो सामने जो भी लड़की आई पाप कर बैठे। एडवाइस माय डियर फ्रेंड्स, ये पाप भूल कर भी ना करना। जब भी अंदर आग लगे बाथरूम में जाओ, अपने हाथ को इस्तेमाल करो, सेल्फ सर्विस, मास्टरबेशन करो और इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दो, इस आग को बुझा दो। ना ही किसी और की जिंदगी से खिलवाड़ करो, ना ही अपनी जिंदगी को नरक बनाओ। मास्टरबेशन बिल्कुल गलत नहीं है, ये आपकी सेक्स की अर्ज को सेटिस्फाई करता है। स्टडी कहती है कि स्ट्रेस को रिलीव करता है, डिप्रेशन से बचाता है और अगर मैरिड हो और एक पार्टनर की इच्छा नहीं हो रही तो रिश्ते में करवाहट आने से बचाता है। तो मेरे यंग दोस्तों, अगर आपने इस कलंक से बचना है, लाइफ के सबसे बड़े पाप से बचना है, सबसे बड़ी सामाजिक बुराई से बचना है, तो थोड़े शब्दों में समराइज करता हूं। वाइफ के अलावा किसी और लड़की से सेक्स के बारे में सोचो भी नहीं, वाइफ के साथ भी जबरदस्ती नहीं करो। जब भी इच्छा हो आग लगे, इस आग को अपने ही हाथों से बुझा लो। ध्यान रहे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जरूरत से ज्यादा कुछ भी बुरा ही होता है, इसलिए उन हालातों को अवॉइड करो जिनसे ये आग लगती है। गंदी फिल्में, गंदे सीन्स अवॉइड करो, नॉन वेज जोक्स शेयर नहीं करो, मां बहन की गालियों से परहेज करो। यूट्यूबर्स या फिल्म इंडस्ट्री के वो लोग जो अपने प्रॉफिट के लिए ऐसी वीडियोस या फिल्में बनाते हैं जिसमें यूथ के अंदर सेक्स की आग लगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी फिल्में ऐसी वीडियोस ना बना के समाज को सुंदर बनाने में अपना योगदान दीजिए। वेल, मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि हम सुंदर समाज बनाने में पूरा सहयोग दे पाए। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।
सर्वेक्षण किए जाते हैं जिनके परिणाम भी काफी रोचक होते हैं। ऐसे सर्वेक्षणों का उद्देश्य सेहत की दृष्टि से इस विषय का ज्ञान बढ़ाना होता है। इन सर्वेक्षणों में पाए गए कुछ रोचक तथ्य इस तरह से हैं। नंबर एक, एक बार के मैथुन में जो वीर्य निकलता है उसमें 30 सेकंड 45 करोड़ तक शुक्राणु होते हैं। नंबर दो, वीर्य को वीर्य बैंक में 196.9 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रखा जाता है। नंबर तीन, सेक्स करने से तनाव कम होने के साथ साथ सिर दर्द भी गायब हो जाता है। नंबर चार, लगभग 25% पुरुष वर्तमान समय में सेक्स के बारे में सोच रहे होते हैं। नंबर पाँच, यौन क्रिया की चरम अवस्था के वक्त स्त्री पुरुष दोनों के दिल की धड़कन 140 प्रति मिनट तक पहुंच जाती है। नंबर छह, महिलाएं 45 साल तक उम्र तक औसतन 3000 बार सेक्स करती है। नंबर सात, 40 साल की उम्र तक के मर्दों के लिंग मात्र 10 सेकंड में खड़े हो जाते हैं। नंबर आठ, ग्रीक दंपति एक वर्ष में सबसे ज्यादा औसतन 138 बार सेक्स करते हैं, जबकि जापानी दंपति सबसे कम केवल 45 बार ही करते हैं। नंबर नौ, पुरुष के लिंग से वीर्य निकलने की गति 36.9 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो यूसेन बोल्ट के 100 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए काफी है। नंबर दस, एक व्यस्क पुरुष के अंकुश में इतने शुक्राणु होते हैं कि इन्हें 404 मीटर तक फैला के रखा जा सकता है। नंबर 11, एक छोटे से कैप्सूल में इतने शुक्राणु आ सकते हैं जिनसे वर्तमान पृथ्वी पर मौजूद मनुष्यों से ज्यादा जनसंख्या बनाई जा सकती है। नंबर 12, संभोग करते समय महिलाओं के स्तन और योनि के अलावा नाक का भीतरी भाग भी फूल जाता है। नंबर 13, सेक्स करते समय आदमी की दाढ़ी आम अवस्था के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ती है। नंबर 14, एक बार मैथुन करने से पुरुष की 100 कैलोरी खपत हो जाती है। नंबर 15, एक सर्वेक्षण के अनुसार ब्राजील के युवा युवतियां किसी भी देश के मुकाबले सबसे पहले अपना कौमार्य खोते हैं, लेकिन भारत इस मामले में सबसे पीछे है। नंबर 16, ज्यादा शराब पीने वाले पुरुषों को महिलाएं सबसे पहले रिजेक्ट करती है। नंबर 17, सेक्स के समय पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले ज्यादा पसीना आता है। स्त्रियों की शारीरिक संरचना में शरीर से निकलने वाले पसीने को कंट्रोल करने का गुण होता है। नंबर 18, 30% पुरुष शीघ्र पतन के शिकार है। नंबर 19, 83% स्त्रियां अपने साथी के लिंग के आकार से पूरी तरह संतुष्ट है। नंबर 20, मर्द औसतन अपने जीवन काल में 17 लीटर वीर्य निकालते हैं। नंबर 21, लगभग 75% पुरुषों का वीर्य 3 मिनट से भी कम समय में हो जाता है। नंबर 22, एक दिन में लगभग 100 करोड़ लोग सेक्स करते हैं।
नमस्ते। पहली बार सेक्स करने पर कुछ लड़कियों को अधिक उत्तेजना होती है और इसके कारण स्तन के निप्पल और आसपास के हिस्सों और मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह तेजी से होता है। इस क्रिया को वैसोकंजेशन कहते हैं, जो निप्पल को अधिक सख्त बना देता है, जिसके कारण निप्पल बड़ा हो जाता है और सेक्स के दौरान लड़की को चरम सुख की प्राप्ति होती है। आमतौर पर निप्पल अधिक संवेदनशील होता है, लेकिन जब सेक्स की बात आती है या लड़की के साथ अंतरंग बातें की जाती हैं तो उसका निप्पल बड़ा और सख्त हो जाता है। आपको बता दें कभी ना कभी पहली बार सेक्स करना शुरू करता है और इसका भरपूर आनंद लेता है, लेकिन सेक्स करने के बाद लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के शरीर में अधिक बदलाव देखने को मिलते हैं। उनमें कुछ बदलाव बाह्य होते हैं जबकि कुछ बदलाव आंतरिक होते हैं। पहली बार सेक्स करने के बाद या वर्जिनिटी होने के बाद लड़कियों के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। इसके बाद लड़कियों के शरीर में कई तरह के हार्मोन्स का स्राव होने लगता है और इसके कारण उन्हें बार बार सेक्स करने का मन होने लगता है। कुछ बदलाव तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर कोई भी व्यक्ति यह बता सकता है कि लड़की वर्जिन नहीं है। भले ही लोग इस बारे में खुलकर बात न करें, लेकिन फर्स्ट टाइम सेक्स को लेकर सबके मन में कुछ न कुछ फैंटेसीज हमेशा रहती हैं। खास तौर से महिलाओं के मन में फर्स्ट टाइम सेक्स को लेकर कई प्रकार की बातें चलती हैं। कुछ महिलाओं के लिए फर्स्ट वजाइनल सेक्स का अनुभव बहुत यादगार साबित होता है तो कुछ को इस मौके पर बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है। कुछ को तो पहली बार सेक्स करने में ब्लीडिंग तक होती है। अगर मानसिक रूप से सेक्स के लिए तैयार नहीं है तो आपको संभवत सेक्स में मजा नहीं आएगा। आपके मजा न आने का अर्थ है कि आपके पार्टनर को पेनिट्रेट करने में भी परेशानी होगी। इसलिए बेहतर होगा कि पार्टनर के साथ सेक्स करने से पहले उनके साथ इमोशनल जुड़ाव बनाएं।
Now and press the bell icon. Never miss an update.
दोस्तों, हमारे रिश्ते की बुनियाद हमारे पार्टनर की खुशी और हम कितना उसकी ज़रूरतों को समझते हैं, उसकी कितनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उस पर निर्भर करता है। किसी भी फीमेल पार्टनर को खुश रखना दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज होता है, चाहे फाइनेंशियली उसकी ज़रूरतें पूरी करना हो या फिर फिजिकली। एक औरत को पैसे से ज़्यादा अगर किसी चीज़ में खुशी मिलती है तो वो है प्यार। कुछ प्यार के लम्हे जो अपने पार्टनर के साथ बिताएं, बस उन्हें यादगार बना दें। इमोशनल लव के साथ साथ फिजिकली लव भी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने उन्हें वो सुख दे दिया तो आपकी पत्नी, आपकी पार्टनर आपको हमेशा प्यार करेगी और आपसे हमेशा के लिए एक मजबूत डोर से बन जाएगी। ऐसी डोर जिसे हालात की कैंची कभी काट ही नहीं सकती। पर हर मर्द अपनी फीमेल पार्टनर को शारीरिक रूप से खुश कर पाए ये जरूरी नहीं है। फीमेल पार्टनर को खुश करना भी एक जादूगरी से कम नहीं है। कोई भी आदमी एक फीमेल को खुश करने की कला सीख ले तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं। पर फीमेल पार्टनर को खुश रखना आसान नहीं है, बस शर्ते तब जब आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत कमजोर हो। आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाते हो, आपका इरेक्शन लॉन्ग लास्टिंग ना हो, दोस्तों ऐसी कंडीशन में रिश्ते को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। संतोषजनक यौन अनुभव के लिए लिंग की लंबाई और मोटाई दोनों ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कुछ महिलाएं अपने साथी के लिंग की लंबाई पर अधिक ध्यान देती हैं, जबकि अन्य महिलाएं मोटाई पर अधिक ध्यान देती हैं। यह वास्तव में क्या बेहतर है? इस जटिल प्रश्न का कोई आसान जवाब नहीं है कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में आनंददायक यौन संबंध होने पर लिंग की मोटाई उसकी लंबाई से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि योनि का सबसे सेंसिटिव हिस्सा 2 से 3 सेमी की गहराई में स्थित होता है। आमतौर पर सब सोचते हैं कि औरत के आनंद के लिए लिंग का लंबा होना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आदमी के लिंग की मोटाई यानी कि साइज औरत के आनंद के लिए ज्यादा जरूरी होता है। आपका लिंग जितना मोटा और कड़ा होगा, आपकी पत्नी उतनी ही संतुष्ट हो पाएगी। दोस्तों, यही नहीं, मोटा लिंग सेक्स के दौरान औरत की क्लिटोरिस को उत्तेजित करके एहसास कई गुना बढ़ा देता है, जिससे ऑर्गेज्म होने का असर कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, भारत में हर साल 10,000 लोग अपने लिंग की लंबाई और मोटाई को ऑपरेशन के जरिए बढ़वाते हैं। हम हमेशा से कहते आए हैं कि इससे स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि नर्व फाइबर लिंग की कैविटीज में गहरे अंदर तक गए होते हैं। यदि इन कैविटीज में कोई नुकसान हो जाए तो कई जोखिम उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे सेंसिटिविटी चला जाना, खड़े होने में दर्द होना और सबसे बड़ी बात, ना मरती। दोस्तों, पर अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आई हूँ जिसको यूज करने पर आप अपनी सेक्स लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ USA नंबर 1 गुड मैन कैप्सूल की, जो आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगा। गुड मैन कैप्सूल यूज करने के बाद अपनी फीमेल पार्टनर को आप पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, लंबाई भी बढ़ेगी, मोटाई भी बढ़ेगी, स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा और आपके संभोग करने का समय भी बढ़ेगा। दोस्तों, ऑपरेशन की तुलना में गुड मैन कैप्सूल के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये शरीर को प्राकृतिक रूप से लिंग में वसा उत्तकों को इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, गुड मैन कैप्सूल आपकी सेक्स रिलेटेड हर प्रॉब्लम को दूर करेगा ही, साथ में आपकी लाइफस्टाइल भी हेल्दी कर देगा। आइए अब मैं आपको बताती हूँ इस कैप्सूल के खास फायदे। गुड मैन कैप्सूल्स मेल सेक्स ऑर्गन का साइज नेचुरली तरीके से इंक्रीज करके उसे उसका एक्चुअल साइज देता है, जिससे मर्द में एक कॉन्फिडेंस आता है और सेक्सुअल एक्टिविटी को ज्यादा लंबे समय तक कायम रखता है। दोस्तों, गुड मैन कैप्सूल्स टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करके परफॉर्मेंस को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। दोस्तों, गुड मैन कैप्सूल्स लिंग में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करके लिंग को हार्ड और मस्कुलर बना देता है। गुड मैन कैप्सूल्स आयुर्वेदिक हर्ब से बना है। ये 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। गुड मैन कैप्सूल्स आपके स्टेमिना को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे आप बिस्तर पर ज्यादा समय तक अपने पार्टनर को समय दे पाते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, अपने पार्टनर की खुशी के लिए बन जाइए गुड मैन और तुरंत मंगवाइए USA नंबर 1 गुड मैन कैप्सूल। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ इसका सेवन कैसे करें। गुड मैन कैप्सूल को एक बार सुबह और एक बार शाम खाना खाने से पहले खाएं। इसको मिल्क के साथ लेना भी बेहतर है। गुड मैन कैप्सूल आप सेक्स करने के 1 घंटे पहले भी ले सकते हैं, जिससे आप बेहतर और देर तक सेक्स कर पाएंगे अपने फीमेल पार्टनर के साथ। दोस्तों, गुड मैन कैप्सूल में शार्क कार्टिलेज होते हैं, जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आपके ब्रेकडाउन को रिपेयर करता है और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस के लिए आपको मजबूत करता है। गुड मैन कैप्सूल में पेरू जिनसेंग रूट्स होती है, जो स्टेमिना के साथ साथ खराब पड़ी सेक्स लाइफ को रिपेयर करती है, साथ ही साथ इंजरी होने से भी बचाता है। ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट करता है और इम्यूनिटी को भी अच्छी करता है, जिससे आपके बीमार होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों, गुड मैन कैप्सूल इरेक्टाइल डिसफंक्शंस को ठीक करता है, पेनिस ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। दोस्तों, इन बातों का जरूर ध्यान रखें। 18 साल से कम आयु वाले व्यक्ति इसका सेवन ना करें। दिन में 2 कैप्सूल्स का ही सेवन करें। इससे ज्यादा सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपका रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ है या हार्ट अटैक आया है, तो अभी इसका सेवन ना करें। तो दोस्तों, देर किस बात की, आप गुड मैन कैप्सूल को ऑर्डर करने के लिए कॉल करें हमारे दिए गए नंबरों पर +91 9892 703 158। और याद रखें दोस्तों, ओरिजिनल गुड मैन कैप्सूल आपको सिर्फ इसी नंबर पे मिलेगा। मार्केट में बहुत से डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स गुड मैन कैप्सूल्स के नाम से बिक रहे हैं, तो दोस्तों आप सावधान रहें और ध्यान रखें, ओरिजिनल गुड मैन कैप्सूल USA में निर्मित है और आप इसके पैकेट पे मेड इन USA चेक जरूर करें। मेरे प्यारे दोस्तों, गुडमैन कैप्सूल को खरीदने की प्रोसेस में आपको अपनी पहचान के बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे सभी स्तरों पर गुप्त रखा जाता है। वास्तव में आपको भेजे गए पार्सल पर पैकेज की सामग्री का उल्लेख नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी इसका ऑर्डर दें और बिल्कुल नए स्तर पर अपने जीवन का आनंद लें। दोस्तों, गुडविन कैप्सूल की कीमत है 3,999 रुपए। और हाँ, अभी ऑर्डर करने पर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल शानदार डिस्काउंट। अभी ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगा सिर्फ ये प्रोडक्ट 3,600 रुपए में। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी फोन लगाएं और ऑर्डर करें हमारा USA नंबर 1 गुडमैन कैप्सूल। तो आप भी जल्दी जाएं और अपने पार्टनर की नजरों में बन जाएं गुडमैन नंबर 1। तो दोस्तों, अपनी लाइफ और अपनी वाइफ का ख्याल रखें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।